नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजस्व और भूमि सुधार विभाग में विभिन्न पदों पर चयनित 9,888 अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र प्रदान करेंगे। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अब MBBS की पढ़ाई हिंदी में भी होगी। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की अधिसूचना। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बक्सर, भोजपुर, पटना, गोपालगंज, वैशाली समेत 13 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का ऐतिहासिक लगातार तीसरा कार्यकाल गति और निरंतरता के लिए जनादेश है। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 5 वर्षों में 3 गुना गति से काम करेगी और देश को विकास के अगले स्तर पर ले जाएगी तथा 2047 तक विकसित भारत की महत्वाकांक्षा को पूरा करेगी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार पेपर लीक की घटनाओं से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं के भविष्य को खतरे में डालने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाएगा।
सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए कदम उठा रहे हैं। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है।
प्रधानमंत्री के जवाब के बाद लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सत्र के दौरान सदन में 103% कार्य हुआ। इस सत्र में कुल 539 सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजस्व और भूमि सुधार विभाग में विभिन्न पदों पर चयनित 9,888 अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र प्रदान करेंगे। इनमें विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, सर्वेक्षण कानूनगो और सर्वेक्षण अमीन के पद पर चयनित उम्मीदवार शामिल हैं। पटना के संवाद भवन में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, विभागीय मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल समेत अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहेंगे। वहीं जिला मुख्यालयों पर आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री नियोजन पत्र प्रदान करेंगे। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अब हिंदी में भी पढ़ाई होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में मेडिकल पाठ्यक्रम MBBS की पढ़ाई हिंदी माध्यम से कराने की व्यवस्था प्रभावी कर दी है। श्री पांडेय ने बताया कि छात्रों के सामने विकल्प होगा कि वे अपनी इच्छा अनुसार हिंदी या अंग्रेजी में पढ़ाई कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप नीट UG परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के लिए इसी सत्र से हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम राज्य में लागू होगा। श्री पांडेय ने कहा कि मध्य प्रदेश के बाद बिहार देश का दूसरा राज्य बन गया है जहां मेडिकल कॉलेज में MBBS के छात्रों को हिंदी में भी पढ़ाई करने का विकल्प मिलेगा। उन्होंने कहा कि लोकली रेलिवेंट एंड ग्लोबली कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स बनाने में यह मॉडल काफी लाभदायक होगा। राज्य सरकार शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए नई नीति बनाएगी। इसके लिए शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। यह समिति 15 दिनों के अंदर अपने सुझाव सरकार को देगी। शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के परियोजना निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक समिति के सदस्य बनाए गए हैं। ये समिति अनुकंपा नियुक्ति और अवकाश तालिका पर भी सुझाव देगी। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख और पूर्व केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा को बिहार से राज्यसभा के लिए एनडीए उम्मीदवार के रूप में नामित करने का फैसला किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में पत्रकारों को यह जानकारी दी। राज्यसभा के दो सदस्य भाजपा के विवेक ठाकुर और राष्ट्रीय जनता दल की मीसा भारती के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद राज्यसभा की ये दो सीटें खाली हुई हैं। श्री कुशवाहा त्रिकोणीय मुकाबले में बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव हार गए थे। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग पारिवारिक पेंशन से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए इस माह एक विशेष अभियान चला रहा है। विभाग में संयुक्त सचिव ध्रुव ज्योति सेनगुप्ता ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में कहा कि पेंशन से संबंधित कुल शिकायतों में 20% से अधिक शिकायतें पारिवारिक पेंशन से जुड़ी होती हैं। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान पारिवारिक पेंशन से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा।
अगर आप कुटुंब पेंशन भोगी हैं और आपका कोई भी शिकायत है तो आप आइदर हमारे टोल फ्री नंबर जो 1800111960 है उस पर आप शनिवार और रविवार छोड़कर आप किसी भी वीकडेज में सुबह 9:30 से शाम के 5 बजे तक आप अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा pgportal.gov.in/pension/ इस पर आप जाएं और इस साइट पर आप अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक धार्मिक समागम में मची भगदड़ में 116 लोगों की मौत हो गई। ये भगदड़ कल सिकंदरा राव तहसील के फुलराई गांव में कथावाचक भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुई। अधिकारियों ने बताया कि भगदड़ तब मची जब कार्यक्रम खत्म होने के बाद श्रद्धालुओं ने भोले बाबा की एक झलक पाने की कोशिश की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। मानसून की सक्रियता से राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में कई स्थानों पर बहुत भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया है कि अगले 24 घंटों के दौरान बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, सीतामढ़ी और मधुबनी जिले के कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इस अवधि में पटना, गोपालगंज, अरवल, मुजफ्फरपुर, कैमूर, रोहतास और वैशाली जिले में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के शेष हिस्सों में मध्यम बारिश की संभावना है।
एक तरफ रेखा उत्तर पश्चिमी बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल होते हुए गुजर रही है। इन मौसमी सिस्टम के कारण बिहार के अनेक क्षेत्रों में मध्यम वर्षा एवं सारण, भोजपुर, वैशाली, अरवल, गया, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पटना, कैमूर, रोहतास, सिवान एवं मधुबनी में एक दो जगहों पर भारी वर्षा का पूर्वानुमान है।
इधर इस दौरान विभिन्न स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की भी आशंका है। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान घर से बाहर नहीं निकलने और सतर्कता बरतने की अपील की है।
आसमान में बिजली के चमकने, गरजने, कड़कने के समय यदि आप खुले में हो तो शीघ्रातिशीघ्र किसी पक्के मकान में शरण लें। जहां हैं वहीं रहें, हो सके तो पैरों के नीचे सूखी चीजें जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते रख लें। ऊंचे पेड़ के नीचे न खड़े हों। बिजली के सुचालक वस्तुओं से दूर रहें। समूह में न खड़े हों। रेडियो और टीवी पर मौसम के साफ होने का संदेश प्रसारित होने का इंतजार करें।
इधर भारी बारिश के कारण कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड के शिवपुर गांव में दुर्गावती नदी पर बना छलका पुल बह गया है। हमारे अरवल संवाददाता ने बताया है कि जिले में सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिला मुख्यालयों सहित कुर्था और करपी प्रखंड के विभिन्न भागों में जल जमाव के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के चलते गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा और परमान नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बागमती, कमला बालान, महानंदा और परमान नदी विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान को पार कर गई है। बागमती मुजफ्फरपुर के रून्नीसैदपुर में खतरे के निशान से 70 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गई है। कमला बालान नदी मधुबनी के झंझारपुर में लाल निशान से 9 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जयनगर में नदी का जलस्तर लाल निशान के पास पहुंच गया है। महानंदा नदी पूर्णिया के ढेंगरा घाट और परमान नदी अररिया में लाल निशान के ऊपर बनी हुई है। इधर कोसी नदी का जलस्तर सुपौल के बसुआ और खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। अधवारा नदी सीतामढ़ी के सुंदरपुर में खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के सुरसंड प्रखंड में रातो नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। इसके प्रभाव से देवारी मतौना, श्रीखंडी भिट्ठा पूर्वी पंचायत और सीमा याही में बाढ़ का पानी फैल गया है। जिलाधिकारी रिचि पांडे ने बाढ़ प्रभावित स्थलों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। वहीं जल संसाधन विभाग ने बाढ़ के खतरे को देखते हुए अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है और तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी गई है। मुजफ्फरपुर के औराई और कुर्नी प्रखंड के जन वितरण प्रणाली के 6 दुकानदारों पर खाद्यान्न की कालाबाजारी के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अरवल जिले के सदर अस्पताल के एक भाग में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। अस्पताल प्रबंधक ललन सिंह ने बताया कि इस घटना में कंप्यूटर, एसी और फर्नीचर सहित कई सामान जलकर नष्ट हो गए। औरंगाबाद के नगर भवन में सैनिक कल्याण विभाग की ओर से एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। उप विकास आयुक्त अभेंद्र मोहन सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए शहीदों के त्याग और बलिदान को याद किया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में 116 लोगों की मौत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है, हाथरस में हाहाकार, सत्संग के बाद भगदड़, 116 मरे। दैनिक जागरण ने नीट यूजी पेपर लीक मामले पर लिखा है, नालंदा में रॉकी के ठिकाने पर सीबीआई ने मारा छापा। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब का शीर्षक लगाया है, कांग्रेस के मुंह झूठ लगा, हिंदुओं पर झूठे आरोप की साजिश। प्रभात खबर ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय के हवाले से लिखा है, मेडिकल कॉलेजों में इसी सत्र से हिन्दी में पढ़ाई। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, नव दोहरीकृत वारिसलीगंज नवादा रेलखंड पर ट्रेन का स्पीडी ट्रायल। आज अखबार लिखता है, आचार संहिता के मामले में लालू यादव और राबड़ी देवी को राहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजस्व और भूमि सुधार विभाग में विभिन्न पदों पर चयनित 9,888 अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र प्रदान करेंगे। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अब एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में भी होगी, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की अधिसूचना। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बक्सर, भोजपुर, पटना, गोपालगंज, वैशाली समेत 13 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।